हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 23। आध्यात्मिकता को समझने के लिए पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सह गण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सह गण ललिता श्रीविशाखन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता श्रीराधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 23। अभी हमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जो पहले जो दो चीजें पूछी थी ना, प्रकृतिम पुरुषम चैव, उसके विषय में पुरुष के विषय में बता रहे थे। अब तक जो हम लोगों ने 22 श्लोक पढ़ा ना, तब तक भगवान ने क्या बताया? पहले तो 20 में बताया प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवं। के प्रकृति जो है उसको और पुरुष को आपको क्या समझना चाहिए? अनादि समझना चाहिए। और इसके अंदर जो भी विकार आते हैं वो क्यों आ रहे हैं? वो गुणों के अनुसार आते हैं। और फिर 21 में भगवान ने बताया कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों और कार्यों की हेतु है, कारण है, और जीव इस संसार में विविध सुख और दुख भोगता है। हालांकि भगवान का दास है लेकिन संसार में आता है और दुख सुख भोगता है। और कल भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात बताई, क्योंकि वो प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ देता है। पुरुष प्रकृति स्थो ही, पहले तो प्रकृति के अंदर आ जाता है और उसके बाद क्या होता है, जो प्रकृति के गुण हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और प्रकृति के साथ वो अपना संबंध जोड़ देता है। भगवान के साथ अपना संबंध जो पहले से है उसको भूल जाता है। उस विस्मृति के कारण सदसद योनि जन्मसु, अच्छे और बुरी योनियों में जन्मता रहता है। ये कौन सा जीव था? ये भी पुरुष के बारे में हो रहा था ना। देखो जिस तरह से ज्ञाता दो है ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दो ज्ञाताओं के बारे में बताया, एक मत परा था जो भगवान के अंडर कंट्रोल था, और दूसरा बोला, भगवान ने कहा कि मैं भी ज्ञाता हूँ लेकिन मैं मुख्य ज्ञाता हूँ क्योंकि मैं समस्त शरीरों को जानता हूँ। ज्ञाता का मतलब जानने वाला, ठीक है। उसी तरह पुरुष भी दो है। एक पुरुष को हम लोगों ने अभी पढ़ा जो कि प्रकृति के अधीन हो जाता है और उसे अच्छी बुरी योनियों को झेलना पड़ता है। आज भगवान जिस सत्य का उद्घाटन करने वाले हैं उसमें एक अन्य पुरुष की बात हो रही है। तो ये वाला श्लोक जो है ना इस पूरे अध्याय का सार है, बहुत ही सुंदर श्लोक है और मैं हृदय से चाहूंगी कि आप इसको अच्छे तरीके से समझो। बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। जो लास्ट में दो लफ्ज लिखे ना पुरुषः परः, पहले इसको समझे कि वो भी एक पुरुष है। पुरुष का मतलब क्या है? पुरुष का मतलब है भोक्ता। वो भी तो भोक्ता था ना जो पहले भोग रहा था। वो क्या भोग रहा था? गुणों के अनुसार जन्म और मृत्यु के आवागमन को भोग रहा था और सुख दुखों को भोग रहा था। लेकिन ये भी भोगता है, आप देखते हैं वो क्या भोगता है, वो तो भगवान क्लियर करेंगे। लेकिन ये भी पुरुष है और आगे जो वर्ड लिखा हो ना परह, लास्ट वर्ड परह का मतलब होता है दिव्य। ये भी पुरुष है, ये भी भोगता है और ये परह है, मतलब ये दिव्य पुरुष है। अब उसका कार्य क्या है वो हमें इस श्लोक में बताया जाता है। देखो मैंने आपको कल बताया था ना दो पक्षी एक ही वृक्ष पर हैं। एक क्या कर रहा है? फलों को खा रहा है और दूसरा चुप करके देख रहा है कि मेरा मित्र जो है वो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है। वो खामखा परेशान हो रहा है, दुनिया में सुख नहीं है फिर भी देख रहा है, संसार में सुख ढूंढने की कोशिश करता है, मेरी तरफ देखेगा तो खुश हो जाएगा। वो जो पीछे बैठा हुआ था ना जो खाली देख रहा था उसको आज क्लियर कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर तरीके से। भगवान कहते हैं उपदृष्टा, अभी उपदृष्टा, दृष्टा का मतलब होता है देखना और देख कर उसका साक्षी बनना, जैसे आप आई विटनेस जिसको बोलते हैं ना कि भाई चश्मदीद गवाह। तो ये है उपदृष्टा, वो गवाह है। किस चीज का गवाह है? जो करतूत आत्मा यानी जो पहला वाला पुरुष था ना वो जो करतूत इस संसार में करता है, वो क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, किसी के लिए अच्छा सोच रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, किसी के लिए मतलब इवन उसके विचारों का भी साक्षी रहता है, जो उसके मन में बात होती है ना उसका भी साक्षी रहता है, उसके हर कार्य। इसीलिए हम लोगों को अक्सर बोला जाता है ना आप ना संसार से छुपकर कार्य करते हो पर भगवान तो आपको देख रहा है, ऐसा बोलते हैं ना कि वो तो देख रहा ही होता है हर वक्त, आप भले जो भी कार्य करते हो तो वो कैसे देख रहा है? क्योंकि वो आपके हृदय में बैठा हुआ है। अब जब हमारी मृत्यु होती है ना तब हम लोग सब जाते हैं उधर, और समझो ऐसा समझो उनके पास एक ऐसा कैमरा है जिसमें वो सारा का सारा रिकॉर्ड कर रहा होता है। जो भी हम भूल जाते हैं कि मैंने क्या क्या गंदा कार्य किया, कौन कौन से काले करतूत किए संसार में, लेकिन वो नहीं भूलता। शुरू से लेकर अंत तक जो भी हमारा काला चिट्ठा है उसको पूरा रिकॉर्ड करता है। और जब हम मरते हैं ना, जब यमराज की अदालत में हमारी इंक्वायरी होती है सारा के क्या क्या किया, तो वहां पर एक बहुत बड़ा LCD लगा हुआ है, पूरा बहुत बड़ा होगा, वॉल के जितना होगा। उसमें क्या है पूरा वो जो CD उसने रिकॉर्ड की थी ना वो पूरा चलाता है। हार्ड डिस्क होगी उसमें बहुत सारा होगा, क्योंकि पूरे जीवन में तो कितने सारे काले करतूत किए होंगे, वो सारा का सारा चलाता है। और क्योंकि वो उपदृष्टा है, आई विटनेस है, उसने देखा हुआ है, साक्षी है, तो उस टाइम पर हम आनाकानी नहीं कर सकते कि नहीं भाई ये मैंने नहीं किया था, ये तो मैंने किया ही नहीं था ऐसे किसी और, क्योंकि वहां पर ना वकालत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट से सबूत पेश कर देता, वो सामने बैठा हुआ होता है ना, अंदर बैठा हुआ है तो सारे सबूत डायरेक्ट से दे देता है। तो वहां पर है ना हमारी कोई वकालत करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि सब कुछ पता होता है। और दूसरा ये कि हम अगर अपनी ऐसे डिफेंस में ऐसे बोले ना कि मैंने उसके साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो फिर पता है उसका आंसर क्या दिया जाता है? बोले देखो अभी तो तुम्हारी टर्न है ना, आप अभी आपके जो गुनाह है या जो भी पुण्य है उनका हिसाब दिया जा रहा है ना, अभी आपकी बात करो कि आपने क्या क्या किया, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, वो जब उसकी सुनवाई होगी ना जब वो आएगा तब उसके साथ जो जो करना होगा हम लोग करेंगे। आज तो तुम्हारा दिन है, तुमने जो संभाला, तुमने जो किया, तुम्हें जो भगवान श्री कृष्ण ने इतना सुंदर जीवन दिया, इतना अच्छा मनुष्य देह, उसके अंदर इतनी सारी सहूलियत दी, इतना फ्रीडम दिया, उस आपने उस स्वतंत्रता का कितना नाजायज फायदा उठाया, कितना दुरुपयोग किया और कितना सदुपयोग किया, वो सारा का सारा आपके सामने पूरा का पूरा एक फिल्म की तरह बताया जाता है। और वो कौन करता है? उपदृष्टा, जो साक्षी के रूप में हमारे हृदय में बैठा हुआ है। आगे है अनुमंता। अनुमंता का मतलब होता है वो देख रहा होता है और आपको अनुमति भी देता है कि भाई हाँ भले करो। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो रेज होता है कि वो परमात्मा है तो हमें मना क्यों नहीं करता कि हम गलत करते हैं तो नहीं करो। ये इसलिए मना नहीं करता क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। देखो मैं आपको इसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो आपको फ्रीडम दो अवस्थाओं में दिया जाता है कि हाँ करो। कब दिया जाता है? एक तो जब हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो टोटल फ्रीडम कि हाँ भाई मेरा बच्चा है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी जैसी इच्छा है वो करे। और दूसरा क्या? आपके ऊपर भरोसा होता है कि वो इस स्वतंत्रता का गलत फायदा नहीं उठाएगा। ये दोनों भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में जो हृदय में बैठे हुए हैं ना, ये दोनों गुण उनके ऊपर उनके जो है ना बहुत प्रमुख है। एक तो फ्रीडम दिया हुआ है, स्वतंत्रता दी हुई है, ताकि इसकी एक वजह ये है कि वो आपसे प्रेम करता है। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि आपके ऊपर भरोसा करता है। अब ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम उस प्रेम पर कितना पूरा उतरते हैं और उस आजादी का जो फ्रीडम उसने दिया है, जो उसने हम पे भरोसा किया है, उसका हम कितना सदुपयोग किए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब हम लोग माता के गर्भ में होते ना, तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान निकालो यहाँ से, यहाँ मैं नहीं रह सकता, इतना ज़रा कष्ट है, आप हमें बाहर निकालो। हम पक्का प्रॉमिस करते हैं कि हम बाहर जाकर आपकी भक्ति करेंगे, तो भगवान को वही प्रॉमिस याद होता है। भगवान ने कहा ये तो मेरा बच्चा है, इसने तो मेरे से प्रॉमिस किया, अभी तो भक्ति करेगा ना। फिर बाहर आके हम क्या गुल खिलाते हैं, कौन से करतूत करते हैं, वो तो हमें ही पता है। बहरहाल वो इसलिए अनुमति देता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हम पे भरोसा करता है। आगे है उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता। वो भर्ता है, स्वामी है हमारा, और भोक्ता यानी कि परम भोक्ता, वो भी तो भोक्ता जीव लेकिन ये परम भोक्ता है। और महेश्वर, वो महेश्वर है यानी कि समस्त ईश्वरों का ईश्वर है, परमात्मा। अभी देखो वो आत्मा थी ना, जो जीव पुरुष वो तो आत्मा थी, और यहाँ पर कहा परमास्मेति चाप्युक्तो, ये कौन कहलाता है? परमात्मा कहलाता है, जो हृदय में साक्षी बन के बैठा है, अनुमति देता है, जो रियल भोगता है, जो महेश्वर है। चाप्युक्तो, युक्तो का मतलब होता है कहा जाता है, उसका नाम क्या है? उसको परमात्मा कहा जाता है। और आगे कहा देहेस्मिन, देहेस्मिन मतलब इसी शरीर के अंदर रहता है, और पुरुषः परः, पुरुष मतलब भोक्ता है और परः है, वो दिव्य है। यानी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं तो भी मतलब अभी जो मैंने जिस पुरुष के बारे में पहले बताया ना 21 और 22 श्लोक में, जो कि है ना मादी गुणों के अनुसार उनके अंडर में रहकर कार्य करते हैं और फिर प्रकृति के साथ और गुणों के साथ अपना संबंध जोड़ देते हैं और अच्छी और बुरी योनियों में उनको फंसना पड़ता है, उसके अतिरिक्त भी, तो भी मतलब उसके अतिरिक्त भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। इस शरीर के अंदर एक दूसरा दिव्य भोक्ता है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद के बहुत अच्छे दृष्टांत सुने थे परिंदों के विषय में। तो बोला एक और भी है, एक तो ये है भोक्ता जो प्रकृति के फलों को भोगना चाहता है, और एक दूसरा दिव्य भोक्ता। देखो यहाँ पर दिव्य का शब्द हुआ है उच्चारण। दिव्य का क्या मतलब होता है? परह, ये उसके जैसा नहीं है, ये जो गुणों से फंस जाए या मादी प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ दे और उसे दुख और सुख भोगने पड़े, वैसा नहीं है। वो एकदम पुरुष परह, वो दिव्य है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाला है। और इसी के रूप में विद्यमान है। आप देखो उसके जो है ना क्वालिटीज बता रहे हैं कि वो ईश्वर है, परम स्वामी है, यानी कि असल में जो पुरुष है और जो प्रकृति है उन दोनों का स्वामी वही है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। वो साक्षी है, उसके काम दो हैं। उसका काम प्रेम करना नहीं है, उसके दो ही काम है, साक्षी और अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है, और उसका नाम है परमात्मा। परमात्मा क्या करता है, यहाँ पर इस चीज को क्लियर किया गया कि वो उपदृष्टा है, वो साक्षी है और अनुमति देता है। वो एक समझो आपके करतूतों का साक्षी बनकर अंदर बैठा हुआ है और आपको बोलता है हाँ ठीक है ये करो करो, हाँ ठीक है तुम्हारा दिल करता है करो, जाओ जाओ जो तुम्हारा दिल करता है करो, ऐसे अनुमति देता है। इसको श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर कहा गया है कि जीव आत्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि वो परमात्मा जो है वो परमेश्वर नहीं, उसका प्रतिनिधि है, उनका स्वांश है। और आगे वह सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि कहा गया पुरुष परह, वो सामान्य नहीं है। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीव में कोई अंतर नहीं। अद्वैत अद्वैत यानी जीव आत्मा और परमात्मा में कोई द्वैत ना हो, कोई डिफरेंस नहीं हो, दोनों आत्मा सु परमात्मा, उनके विषय में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। क्योंकि अद्वैतवादी जो होते हैं वो आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं, इसलिए उनके विचार से परमात्मा तथा जीव आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो तो रॉन्ग ही होंगे ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा उपदृष्टा हनुमंता च, एक दूसरा है तो भी एक दूसरा रहता है संसार शरीर में, जो कि अनुमति दे रहा है, जो परम भोक्ता है, जो परमेश्वर। पहला वाला तो बेचारा फंसा हुआ था, वो फंसा हुआ, और ये परम भोक्ता महेश्वर परमात्मा ये कैसे सेम हो सकता है। तो भगवान श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं प्रत्येक शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। वे जीव आत्मा से भिन्न है, अलग है, जाहिर सी बात है, वे परे हैं, दिव्य हैं। और दिव्य बोला गया साफ साफ कि यहाँ वो तो दिव्य हैं, और उसके बारे में क्या कहा गया कि वो क्या कर रहा है, वो संगति किया हुआ है और सदा सदा योनियों में भटक रहा है, तो ये तो दिव्य है। जीव आत्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोगता के रूप में या शरीर में कर्मों में भोग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित है। अब देखो यहाँ पर जीव आत्मा और परमात्मा को कैसे डिफाइन किया श्री प्रभुपाद ने, जीव आत्मा में जीव आत्मा वे जीव आत्मा से भिन्न है, परे है, दिव्य है। जीव आत्मा क्या करता है, किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है। अब क्षेत्र के कार्यों को भोगता है यानी कि कभी कॉकरोच में बैठ जाता है तो फिर कॉकरोच की तरह उसको गटर में रहना पड़ता है, कभी है ना खटमल की तरह बन जाता है तो कभी बंदर की तरह बन जाता है, तो जो जो क्षेत्र उसको मिलता है। क्षेत्र का क्या मतलब है, ये शरीर। अब वो शरीर किसी का भी हो सकता है ना, 84 लेक्स योनियों में, तो उसके जो कार्य है उसको भोगना पड़ता है। लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में, यानी कि वो सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता। वो ऐसा नहीं है कि वो भी साथ में बैठकर भोग रहा होता है, परमात्मा भी बेचारा अंदर कॉकरोच के साथ बैठ गया तो कॉकरोच की तरह उसको भी भोगना पड़ता है। वो भोगता नहीं है, अपितु वह साक्षी है, मतलब वो खाली रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हुआ है अंदर, साक्षी आई विटनेस के तौर पर, और अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित है। और वो अनुमति दाता है और परम भोक्ता है, उसका नाम परमात्मा है, और वो परमात्मा के रूप में, आत्मा नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा साक्षी के रूप में, वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। श्री प्रभुपाद जी इस बात को कितना अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं, फिर भी अद्वैतवादी इस चीज को मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे आत्मा ही परमात्मा है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्लीज आप इस बात को मान लो कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र हैं। अब देखो शुरू से भगवान इन दोनों को कितना क्लियर करके आए हैं। पहले भगवान ने बताया था ना कि आत्मा जो परमात्मा है उसके सर्वत्र पाणि पादौ, वो हर जगह पर फैले हुए हैं, लेकिन जीव आत्मा ऐसा नहीं होता है, जीव आत्मा सीमित होता है। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतएव वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। अब वो क्यों दे रहा है यहाँ पर बताया, चूंकि परमात्मा परमेश्वर है, वो ईश्वर है, आप सबसे प्रेम आप सबको अनुमति दे रहा है, अंदर बैठ के साक्षी है, और अतएव वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। भौतिक भोग की आकांक्षा, अब यहाँ पर मैंने एक बात क्लियर की कि वो है ना साक्षी है और हमें अनुमति देता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अब यहाँ पर एक बात तो फिर भी समझ लेनी चाहिए कि अगर वो हमसे प्रेम करता है तो भी तो उसे रोकना चाहिए। क्या माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, जो हर नाजायज चीज के लिए उसे थप्पड़ मारते हैं, खाना देना बंद कर दे, रूम में बंद कर देते हैं, कभी कितनी पिटाई करते हैं, वो उससे प्रेम नहीं करते क्या? अगर ये प्रेम है, स्वतंत्रता अगर प्रेम है, तो वो क्या है जो वो करते हैं, वो प्रेम नहीं है क्या? देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, परमात्मा और कृष्ण में भी बहुत डिफरेंस है। परमात्मा देखो, भगवान की तीन फेस शास्त्रों में बताए गए हैं, कौन कौन से? वदन्ति तत्त्व विदस तत्त्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म तो निराकार है, परमात्मा वो है जो आपके हृदय में बैठा हुआ है, उसका कार्य खाली क्या है, वो साक्षी है और अनुमति देता है बस, और उसका कोई कार्य नहीं है। तुम क्या काले करतूत करने वाले हो उसके लिए वो तुम्हें कभी भी, अगर परमात्मा को आपसे थोड़ा भी स्नेह होता तो वो हृदय में बैठा हुआ है ना, वो ये तुम्हें नहीं बोलता, झंझोड़ता नहीं कि क्या तुम जो मतलब अपराध कर रहे होते हैं। आज देखो संसार में अपराध कितना बड़ा हुआ है, परमात्मा के अंदर अगर हमारे लिए जरा भी सहानुभूति होती ताकि तो क्या वो हमें बोलता नहीं कि क्यों तुम जीव इसको फंसा रहे हो, क्यों तुम ना मादी कुदरत के गुणों के नीचे आ रहे हो, क्यों बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हो, क्यों बार बार दुखों को भोग रहे हो, चलो छोड़ो सारे काम छोड़ दो, अभी आज से तुम खाली माला करो, भगवान का जप करो, छोड़ो ये सारे कार्य क्यों कर रहे हो। परमात्मा है ना, उसके अंदर शक्ति तो है, परमेश्वर है, भोगता है, वो कर सकता है ऐसा, लेकिन ये उसकी ड्यूटी नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं कि परमात्मा खाली ये आपको अनुमति देता है और साक्षी है, उसका काम ही यही है। जैसे इसको हम कैसे परमात्मा और भगवान के डिफरेंस को कैसे समझ सकते हैं, देखो एक जज होता है और एक पिता होता है, वही पिता होता है, यानी कि अगर आप चोर हो, अगर आपने कोई घिनौना अपराध किया है, तो आपका जो पिता है वो जज भी है, जज समझते हो ना, जो अदालत में होता है। अब अगर आप अदालत में जाओगे ना उसके पास, तो उसके पास कोई ऐसा, अदालत में आप साबित हो गए हो अगर चोर, और आपका है ना गुनाह साबित हो गया है, विटनेस भी मिल गया है, गवाही भी मिल गई है, तो फिर जज कुछ नहीं कर सकता, जज के हाथ में कुछ नहीं होता है कि वो आपको बचा ले। लेकिन वही जज घर में क्या है, आपका पिता भी है, जज भी है, बट साथ में क्या है, आपका पिता है। आप अगर घर में उसके पास जाते हो और उससे रिक्वेस्ट करते हो कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप कैसे भी करके मुझे बचा दो, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, लेकिन आप कर सकते हो, आप जज हो, आप कुछ किसी तरह से मुझे बचा लो ना। तो अगर वो पिता, क्योंकि घर में वो पिता है, वो हृदय से आपको प्रेम करता है और आपकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है, तो वो क्योंकि जज है, उसके पास पावर्स हैं, वो किसी न किसी वकील को हायर करेगा और किसी न किसी तरह से आपको बचा लेगा, है ना, ऐसा है। उसी तरह से भगवान और परमात्मा में भी यही फर्क है, वो जब परमात्मा के रूप में जाना जाता है तब वो सिर्फ विटनेस पे भरोसा करता है, खाली जो उसके पास साक्षी है ना, जिस चीज का उसको देख रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं 18.66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, मेरे घर में आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे अपराधों को जानते हुए भी तुम्हें माफ करूंगा। तुम्हें मेरे पास आने से कोई डर करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण पिता है, पिता है, वो स्वयं कहते हैं 9.70 में, पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमंकार ऋक्साम यजुरेवच। मैं तुम्हारा पिता हूँ, कृष्ण ने ये कहा है, परमात्मा ने कहीं नहीं कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो ये डिसीजन अब आपको लेना है कि आपको उस पिता के पास कब जाना है, जब वो अदालत में जज बनकर बैठा है या जब घर में बैठा हुआ है माता जी के साथ बांसुरी बजा रहा है। और तब आप उसके पास जाने का तरीका है कि ये जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पुरकशिश भगवान की आलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपया मेरे अशांत और अपवित्र मन को अपने चरणों की तरफ आकर्षित करो और मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं अपने पिताश्री भगवान श्री कृष्ण की अच्छी सेवा कर सकूं। देखो वैसे डायरेक्ट अगर पिता भी होता है ना, उसके पास भी जाते हैं ना, तो पिता का हृदय थोड़ा बहुत कठोर होता ही है। लेकिन अगर माता का आश्रय ले लिया जाए और कहा जाए, मम्मी बताओ ना पिताजी को, बोलो ना मुझसे गलती हो गई, आप बोलोगी तो मान जाएंगे। तो इसी तरह से हमें श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, और जब वो कहेंगी ना कृष्ण से, फिर संसार की कोई भी ताकत हमें अपराधों से मुक्त होने से नहीं रोक सकती। तो ये डिफरेंस है कृष्ण और परमात्मा में। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, परमात्मा की अनुमति के बिना जीव आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। वो हृदय में बैठा हुआ है और वो अनुमति देता है तभी जीव आत्मा करता है। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। ठीक है, जीव भोग रहा है, मतलब भुक्त है, भोगने की वस्तु है, और भगवान भोक्ता है और पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करते हैं। जीव बहुत सारे हैं, बहुत सारे अनंत है, मतलब काउंटलेस है, 9,84,00,000 तो क्या है उनकी खाली क्वालिटीज है, लेकिन उनके अंदर कितने कितने जीव है, तो बोला अनंत है और भगवान सबके रूप में मित्र की तरह उनके हृदय में निवास कर रहे हैं। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। अब बैठे हुए हैं, वो साक्षी भी है और सोच रहा है कि अभी मेरा मित्र मेरी ओर देखेगा, अभी देखेगा, और वो देखता ही नहीं है। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करने की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या बताया कि जीव जो है उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसको अपनी टोटल फ्रीडम है कि वो जीव है वो क्या करता है, भगवान के आदेश परमात्मा जो है उसको उसकी आदेश को स्वीकार करता है, यानी कि उसको सरेंडर कर रहा है, या प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से अपने काम करता है, जो करना चाहे उसके लिए उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, टोटल फ्रीडम। आगे है, क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है अतः वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। मैंने आपको तीन शक्तियां बताई थी ना भगवान की, एक बहिरंगा शक्ति है, एक तटस्था शक्ति है, और दूसरी अंतरंगा शक्ति है। तो जीव क्या है, जीव तटस्था शक्ति है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। तटस्था शक्ति का ये मजबूरी है कि वो तट पर खड़ी नहीं हो सकती, चौखट पे नहीं होगी, या तो अंदर जाएगी या बाहर जाएगी। अंदर जाएगी तो कृष्ण को सरेंडर, कृष्ण भावना अमृत है, और बाहर जाओ तो माया भावना अमृत है, यानी कि या तो जीव भगवान की सेवा करेगा या माया की सेवा करेगा। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसकी उसके भीतर रहता है, यानी कि जब जो जब तक भद्र रहेगा, जब तक शरीर में रहेगा, तब परमेश्वर जो है परमात्मा के रूप में, परमेश्वर का एक स्वांश है वो उसके हृदय में बैठा रहेगा और उसको साक्षी करेगा, उसको मतलब देखेगा और उसको अनुमति देगा, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। यानी कि वो बैठा हुआ है और सोच रहा है कि अब देखिए मैं उसे वापस से याद कराऊं, लेकिन वो उधर नहीं देखता है तो उसको फोर्स नहीं करता, टक टक करके उसको ना झंझोड़ता नहीं कि इधर देखना, इधर दिखाता नहीं है, वो खाली बैठ के वेट कर रहा होता है कब देखे। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, उसका दिल करता है कि वो आए, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे जीव को इस प्रकृति में आकर मजा करना होता, उसको बस ऐसा दिल करता है कि क्या भगवान की भक्ति टेस्टलेस चीज है, यह संसार में कितना चार्म है, कितना टेस्ट है, छोड़ो भगवान भगवान, तो ऐसे हर वक्त ठुकराता रहता है उसकी संगति को। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही भद्र प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण बनता है। अब ये वापस यहाँ बच्चा प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग भगवान, हम अगर जीवने स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो क्यों नहीं कर रहे हैं वो दासत्वता को स्वीकार, क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कुछ क्यों कर रहे हैं? उसका जवाब श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्वतंत्रता जब फ्रीडम दी जाती है ना माँ बाप को भी, जब जैसे घर में भी अगर हम लोग भौतिक मिसाल लें, बच्चों को माँ बाप फ्रीडम देते हैं कि आप भले जो करो, तो कहाँ उस फ्रीडम का सदुपयोग होता है बताओ? हम सब बच्चे, जितने भी हम बच्चे हैं, जब बच्चे थे तब अपने देखें हमने कब कब सदुपयोग किया और कब कब दुरुपयोग। उसमें अगर देखा जाए तो 90% तो फ्रीडम का दुरुपयोग ही हुआ है। तो वही ये दुरुपयोग करने, ये गुणों के कारण जब गुण हम पर, माया हम पर हावी हो जाती है, तो यहाँ पर कहा जाता है स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही भद्र प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण बनता है। ये जो बारंबार ये संसार है ना, उसको बोला जाता है पवर्ग। पवर्ग का मतलब है परिश्रम का वर्ग। इसको बहुत अच्छा श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन इसको मैं अभी क्लियर नहीं कर रही हूँ। बहरहाल ये संघर्ष इसलिए है क्योंकि उसको स्वतंत्रता चाहिए। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश करते रहते हैं। वो आदेश अंदर से भी कर रहे होते हैं और बाहर से तो गुरु और वैष्णवों के रूप में हमें आदेश मिलता रहता है शास्त्रों के अनुसार। यहाँ पर कहा बाहर से भगवद गीता के रूप में उपदेश देते हैं। अब भगवान ने स्वयं भगवद गीता लिख के गए हैं, भाई मेरा आदेश है। जैसे अगर कोई बाप यहाँ से जाता है संसार से, तो बच्चों के लिए कैसे वसीयत लिख के जाता है कि भाई ये मेरी विल है, मेरे बच्चों को देना, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। उसी तरह भगवान ने भी अपनी ये विल लिख कर, लेकिन ये संसार का उसूल है, बाप मरता बाद में, जाता बाद में, पहले बच्चे विल के लिए परेशान होते हैं, क्या छोड़ा, मंडी क्या है, हमारे हिस्से में क्या आया। लेकिन भगवान 5000 साल से विल रख के गए हैं और आज तक हम लोगों ने खोल के देखने की कोशिश नहीं की कि हमारे बाप, अब देखो सांसारिक साधारण सा पिता होता है, वो भी अपने विल में सिर्फ कीमती चीजें जो उसके पास होती हैं उनको ही डिस्ट्रीब्यूट करके जाता है, तो क्या परमात्मा भगवान जो त्रिलोक के स्वामी है, उसने अपने विल में जो हमारे अपने बच्चों के लिए छोड़ के गए होंगे, क्या वो कचरा होगा? वो तो संसार की सबसे बड़ी बहुमूल्य वस्तु होगी। लेकिन नालायक है हम सब बच्चे जो इसको कभी वैल्यू नहीं दी, आज तक आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई और ये देखने की भी कोशिश नहीं की कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या वसीयत छोड़ी है, क्या छोड़ के गए अपने विल में हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ भगवान बाहर से भगवद्गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। बार बार उसको दिखाते, बार बार दुख होता है ना हमें, हर सुख के पीछे एक दुख। जैसे बच्चा पैदा होता है किसी को, उसमें देखो कितना आनंद का अनुभव, लेकिन उसके साथ साथ दुख, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आनंद तो है इस बात का कि हमारे पास बच्चा है, लेकिन हर क्षण में हम लोगों को तंग करते रहते हैं बच्चे और ना हमारे दुख का कारण बनते हैं। उसी तरह जो भी चीज हम संसार में हासिल करते हैं वो साथ साथ में हमारे लिए दुख का कारण भी होती है, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे जो भी हो, हमारे लिए दुख का कारण बनती है। इसीलिए आगे कहा श्री प्रभुपाद ने, उनका वचन है किसका, उनका वचन है जो अंदर भगवान बैठे हुए हैं, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी हो जाओगे। भगवान भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणमजा और अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो। अब देखो दुख क्यों मिलते हैं, क्योंकि हमने अपराध किए हैं, अपराधों की सजा है ना दुख, और भगवान जब समस्त अपराधों को क्षमा कर देंगे फिर दुख किधर आएगा। मुझे दुख मिल रहा है क्योंकि मैंने अपराध किए, अपराध तो भगवान ने कहा मेरे सरेंडर आते ही मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षय कर दूंगा, फिर तो खाली आनंद ही आनंद होगा। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है वह सच्चित आनंदमय जीव की ओर जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। यानी कि जो भगवान के अंदर श्रद्धा रखेगा और अपना मुख अपने मित्र पक्षी के रूप तरफ उन्मुख करेगा वह सच्चिदानंदमय, सच्चिदानंद मतलब जो सत्य है, जो नित्य है और जो आनंदमय है, कंटिन्यूअस जिसके अंदर आनंद है, ऐसे जीवन की ओर प्रगति करने लगता है और आगे उसी जीवन की ओर, यानी कि इस परा, ये जो मैंने बताया था ना प वर्ग है ये संसार, और एक दूसरा अपवर्ग है। अपवर्ग में क्या है, इस संसार की तरह भौतिक क्लेश नहीं है, भौतिक दुख नहीं है, भौतिक गुण नहीं है, तो उस अपवर्ग में धर्म निष्ठता, ये भगवान श्री कृष्ण वेद व्यास जी बताते हैं उसमें भागवत महापुराण में कि धर्म का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या है, कि आप अपवर्ग वाली जगह पर जाओ। तो यही यहाँ पर भी बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो उस आनंद मैदान में प्राप्त हो, दाम हमें प्राप्त होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।